समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी, यू ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे ऑफ कोर्स इज माय को-होस्ट करिश्मा राय, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, बिजनेस कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। But first of all, we have a few fun facts for you today. Did you know who illustrated the Constitution of India?
बिल्कुल, और वे थे महान कलाकार नंदलाल बोस अपनी शांति निकेतन टीम के साथ, और आज हम नंदलाल बोस को उनकी पुण्यतिथि पर याद भी कर रहे हैं।
That's right.
और यहाँ एक और सवाल है कि संविधान की सुंदर सुलेख किसने की थी?
That credit goes to Prem Bihari Narayan Raizada. He hand wrote the entire Constitution in elegant italic style.
Wow. और हाथ से लिखा हुआ, ना कोई टाइपिंग, ना कोई प्रिंटिंग, बस शुद्ध कौशल और धैर्य।
Absolutely right. So many brilliant minds behind one powerful document. So many fascinating stories behind it too.
और भी मजेदार तथ्यों के लिए बने रहिए सिर्फ आपके पसंदीदा रेडियो मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा पर।
Yes, and now we begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi says Nari Shakti is playing an instrumental role in development of the country and giving them due representation in policy making is the need of the hour. Special sitting of Parliament with focus on women's reservation and delimitation begins.
लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश।
Prime Minister holds delegation-level talks with Austrian Chancellor Dr. Christian Stocker in New Delhi to boost trade and investment between the two countries.
देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों का सूचीकरण और गणना का काम आज से शुरू।
In Andhra Pradesh, 8 people killed in a road accident in Kurnool district this morning.
और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we were celebrating From Steam to Speed, the ever-evolving journey of railways. Yes, and let's talk about a journey that's been evolving for over a century, Indian Railways. From the early days of steam locomotives to today's modern network, the transformation has been nothing short of remarkable. And today is a special day that tracks back into history, literally.
बिल्कुल सही कहा आपने, और आज 16 अप्रैल को हम भारत में राष्ट्रीय रेल परिवहन दिवस मनाते हैं। यह वह दिन है जो एक ऐसी अद्भुत यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है जिसने पूरे देश को बदल दिया। आइए जरा 1853 के दौर में वापस चलते हैं। ठीक इसी दिन भारत ने अपनी पहली यात्री ट्रेन को बंबई और ठाणे के बीच दौड़ते हुए देखा था।
A historic ride of just 34 kilometers, but it paved the way for one of the largest railway networks in the world today. And from steam engines to high-speed trains, Indian Railways has come a long way connecting cities, cultures and millions of people every single day.
और यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि बंबई में इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। इतिहास बनते देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में बोरी बंदर स्टेशन पे जमा हुए। इस पहली यात्रा में लगभग 400 यात्री शामिल थे जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित 14 डिब्बों में सफर कर रहे थे।
And leading the way was a steam locomotive named Falkland, symbolizing the dawn of a new era. The departure was nothing short of grand, with a ceremonial 21-gun salute adding to the excitement and pride of the moment.
और लगभग 34 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस ट्रेन ने सफलतापूर्वक यह दिखाया कि रेलवे किस तरह यात्री यात्रा को पूरी तरह बदल सकता है। उस एक यात्रा ने ही उस चीज की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक बनने वाला था। और उस दिन से भारत ने रेलवे के तेजी से विस्तार के एक ऐसे दौर में प्रवेश किया जिसने लोगों, जगहों और संभावनाओं को आपस में जोड़ दिया।
Yes, and after the first passenger train in 1853, railways in India entered a phase of remarkable growth powered by steam locomotives. From just one experimental route, the network expanded swiftly. One key development during this time, Karishma, was the introduction of different railway gauges. Simply put, gauge refers to the distance between the two rails.
और शुरुआत में भारत में ब्रॉड गेज का इस्तेमाल होता था, लेकिन 1871 में अलग अलग और दूर दराज के इलाकों तक रेलवे लाइनें पहुंचने के लिए मीटर गेज शुरू किया गया था।
इवन नैरोवर गेजेस वर यूज्ड इन लेस डेवलप्ड एरियाज, हेल्पिंग कनेक्ट रूरल रीजन्स एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स टू मेजर रेलवे लाइन्स एंड इंजीनियरिंग इनोवेशंस Also played a big role.
और इसका एक बेहतरीन उदाहरण दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है जिसे 1881 में शुरू किया गया था। इसने पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों को दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जोड़ा और पहाड़ी इलाकों में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना पेश किया। और एक अहम पड़ाव 1895 में आया जब भारत ने अजमेर वर्कशॉप में अपना पहला स्टीम लोकोमोटिव बनाया जो स्वदेशी रेलवे निर्माण की शुरुआत का प्रतीक था।
And by the end of the 19th century, railways has already enabled long-distance travel, large-scale freight movement, and nationwide connectivity. Moving into the 20th century, modernization began. And in 1925, India introduced its first electric train between Bombay Victoria Terminus and Kurla Harbour.
और इसके साथ ही 1947 में आजादी के बाद भारतीय रेलवे का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया जिसमें 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियों को मिलाकर एक एकीकृत नेटवर्क बनाया गया। फिर 1952 में बेहतर प्रबंधन के लिए इस प्रणाली को जोन में पुनर्गठित किया गया जबकि डीजल और कोयले से चलने वाली ट्रेन चलती रही। 1985 तक भाप से चलने वाले इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह ज्यादा कुशल डीजल और electric engine आ गई।
And before 2014, only about 20% of the railway network was electrified, and that meant heavy dependence on diesel fuel. But today the story has completely changed. Did you know? As of March 2026, Indian Railways has achieved an impressive 99.6% electrification of its broad gauge network, and that's an incredible leap. And this transformation isn't just about numbers, it's about impact.
और सिर्फ 2024-25 में ही इलेक्ट्रिफिकेशन की मदद से लगभग 180 करोड़ लीटर डीजल बचाया गया जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेनें डीजल इंजनों के मुकाबले लगभग 70% ज्यादा किफायती और पर्यावरण के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होती हैं। यह सस्टेनेबिलिटी और कार्यकुशलता की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है जो लाखों लोगों के लिए सफर को तेज, साफ सुथरा और ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं।
So let's start with the game changer, the Vande Bharat Express, India's first indigenously designed semi-high-speed train, launched in 2019, a proud achievement under the Make in India initiative. And the numbers speak for themselves. Nearly 3.98 crore passengers traveled on the Vande Bharat network in 2025-26 alone. And since its launch, it has already carried over 9.1 crore passengers across more than 1 lakh trips.
वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत कुछ है। जनवरी 2026 में शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर सर्विस ने सिर्फ 3 महीनों में ही 1,21,000 से ज्यादा यात्रियों की सेवा की थी। जहां रफ्तार और आराम जरूरी है, वहीं किफायती होना भी मायने रखता है। यहीं पर अमृत भारत एक्सप्रेस का काम शुरू हुआ। ये पूरी तरह से नॉन एसी आधुनिक ट्रेनें हैं, जिन्हें खास तौर पे कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए डिजाइन किया गया था, जो आराम, सुरक्षा और किफायती सफर की सुविधा देती हैं। जनरल, स्लीपर, पैंट्री और स्पेशल कोच के सोच समझ कर किए गए मेल के साथ ये ट्रेन अलग अलग तरह के यात्रियों की जरूरतों को भी पूरा करती हैं। और मार्च 2026 तक देश भर में 60 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं पहले से ही चल रही हैं।
Yes, and now let's talk about the future high-speed rail in India. The Union Budget 2026-27 is allocated a record 2,78,000 crore to Indian Railways, the highest ever. As part of this vision, 7 high-speed rail corridors have been announced, connecting major cities like Mumbai, Pune, Delhi, Varanasi, Hyderabad, and Bengaluru. And these corridors will span nearly 4,000 kilometers, boosting connectivity and economic growth.
और इस राह में सबसे आगे है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, लगभग 508 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया यह प्रोजेक्ट भारत की हाई स्पीड रेल युग में एंट्री का भी प्रतीक है। आधुनिक ट्रेनों से लेकर बुलेट रफ्तार वाली महत्वाकांक्षाओं तक भारतीय रेलवे सचमुच भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
Yes, and the indigenous train protection system coverage has already been commissioned over 3,100 route kilometers, and the expansion continues with implementation underway on an additional 24,400 kilometers, making journeys safer than ever before. So to conclude, Karishma, I know that for many of us, rail travel may not be the most popular means of travel because of the time factor. But I think that traveling by train has got its own charm, isn't it?
Bilkul.
And for those of us in Delhi, or if you want to, what better way to know about the history of a railway than to just visit the Rail Museum, isn't it? And I think you can find a vast amount of information and all the knowledge you are seeking on the Indian Railways at the Rail Museum. So do visit that if you can. And to conclude, as we come to the end of our journey, it's clear that Indian Railways is more than just a transport system. It's a story of constant evolution. From its humble beginnings as a steam-powered service covering a short distance, it has grown into one of the largest and the most complex railway networks in the world.
और जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, रेलवे अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा, न सिर्फ परिवहन के क्षेत्र में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को सहारा देने और उद्योगों को मजबूत बनाने में भी। कई मायनों में यह सिर्फ जगहों को ही नहीं बल्कि लोगों, अवसरों और प्रगति को भी आपस में जोड़ता है। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय विकास को गति देने वाली एक भरोसेमंद शक्ति बना हुआ है और कल भी, आज भी और भविष्य में भी बना रहेगा।
सो इट्स नॉट जस्ट अ ट्रांसपोर्ट, इट्स इमोशन. From chai at stations to window seat memories, rail journeys are truly unforgettable. And let's not forget the lifeline it provides, supporting trade, travel and tourism across the country, and from creating magical moments in Bollywood songs to bringing people closer during festivals. Indian Railways truly keeps India moving, adding extra trains in festive seasons and ensuring a smooth journey for millions.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, and we focus on the topic of the day, that is the Women's Reservation Bill. And Union Law Minister Arjun Meghwal introduced the Constitution 131st Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. BJP MP in the Rajya Sabha, Medha Kulkarni, has said the Women's Reservation Bill ensures women's power in developing India. And she thanked the Prime Minister Narendra Modi, saying that the whole nation and women are supporting it.
ऐतिहासिक क्षण होगा ये संसद भवन के लिए, पूरे राजनीति के लिए। और जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत में मातृशक्ति का सहभाग हो, उसका सुनिश्चितीकरण किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात।
And speaking to media outside the Parliament House complex, BJP MP Sandhya Ray said, "This is a historic day for women's empowerment in the country."
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से और पूरे देश की मातृशक्ति, मेरी बहनों, माताओं की तरफ से हृदय से आभार, उनका अभिनंदन करती हूं। और देश की नारी शक्ति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक पल है। मुझे लगता है 2029 का जो चुनाव लोकसभा का आएगा, पूरे देश की हमारी जो नारी शक्ति है उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा।
बीजेपी एमपी हेमा मालिनी has said it is an important day for women across the country, as women's reservation bill is a step towards recognizing their ability and honoring them.
देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, सब भावात्मक पूर्ण दिन है आज। एवरीबडी इज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन द होल। हमारे देश के तमाम महिलाओं के लिए एक सम्मान देने की बात है ये आज का दिन, तो इसको इसमें तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इट इज सो इम्पोर्टेंट बिल विच मोदी जी इज ब्रिंगिंग।
और बढ़ते आगे बात अहमदाबाद की कर लेते हैं। आज के डिजिटल युग में भी रेडियो लोगों तक मनोरंजन और समाचार पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। देशी लोक प्रसारक सेवा आकाशवाणी के देशभर के केंद्र भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं का मनोरंजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र भी आगे बढ़ रहा है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज ही के दिन 16 अप्रैल 1949 को आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र की स्थापना की गई थी। देश के तत्कालीन गृह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐतिहासिक संदेश से यह केंद्र प्रारंभ हुआ था। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
आकाशवाणी देश की ऐसी लोक प्रसारक सेवा है जिसने हर भारतीय के बीच अपनी खास जगह बनाई है। आकाशवाणी यह एक शब्द नहीं बल्कि देश के लोगों की भावना विचारों को आवाज देने वाला माध्यम, बातचीत का जरिया, जुड़ाव और प्रेरणा की आवाज है। आज के डिजिटल युग में भी आकाशवाणी ने अपने खास अंदाज से श्रोताओं को अपने साथ जोड़े रखा है। खासकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए तो आकाशवाणी एक आशीर्वाद रूप माध्यम है। आज देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आकाशवाणी से परिचित न हो। आकाशवाणी ने मनोरंजन, समाचार और अन्य तरीकों से सुनने वालों को अपने साथ जोड़े रखा है। इसी दिशा में आकाशवाणी अहमदाबाद ने भी श्रोताओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 16 अप्रैल 1949 को तत्कालीन गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऐतिहासिक संदेश से यह केंद्र का आरंभ हुआ। तब से बरसों पुरानी परंपराएं संजोए बैठा हुआ आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र का आज स्थापना दिन मनाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी अहमदाबाद ने अपने 78वें साल में प्रवेश किया है। आज आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी स्थापना दिवस को शानदार तरीके से मनाया। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव जैन ने भी श्रोताओं को आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के स्थापना दिन की शुभकामनाएं देते हुए क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं।
हमारे देश की गौरवपूर्ण अमूर्त धरोहर को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी जैसा शक्तिशाली माध्यम विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहयोग करता रहेगा। आप सबको एक नए अध्याय के आरंभ की मेरी ओर से मंगल कामनाएं। जय हिंद।
इसी तरह आकाशवाणी मनोरंजन करता रहेगा। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियचा।
Goa is set to strengthen scientific learning among students with a new outreach initiative. Let's find out more about how Goa plans to bring Tare Zameen Par. We have a report.
Chief Minister Dr. Pramod Sawant has called upon students to remain curious, ask questions and develop a spirit of innovation to contribute to a developed India. He was speaking at the launch of the Tare Zameen Par Mobile Digital Planetarium and STEM, that is Science, Technology, Engineering and Math Education Outreach Program, implemented in collaboration with Antaranga Foundation. The initiative led by the Goa State Council for Educational Research and Training will cover government and aided schools across the state, especially for classes 5 to 10. The program aims to bridge the gap between theoretical knowledge and practical understanding through hands-on learning. Featuring a mobile digital planetarium and portable STEM labs, the initiative will provide immersive astronomy experiences and interactive science sessions. Officials say it will promote scientific temper, critical thinking, and equal access to advanced learning tools across urban and rural schools. For Parikrama, Mahesh Sokhade, Panji.
In Uttar Pradesh, Jal Pakhwara will be organized from today to 30th of April in all schools and educational institutions across the state under the Jal Shakti Abhiyan. Government is taking unique steps in the field of water conservation by linking it directly with schools. We have more from a correspondent.
Through this initiative, lakhs of students will not only become aware of water conservation, but will also actively take responsibility for saving water. The effort aims to make water conservation a collective public responsibility, starting from classrooms and extending its impact across society. A key feature of the campaign is its robust monitoring system. All schools have been mandated to submit daily online reports of activities. Through a tracker, details such as the number of participants, activity descriptions, and photo-video uploads will be recorded. said. At the district level, basic education officers have been designated as nodal officers to ensure accountability. The government intends to transform the water conservation drive into a mass movement, fostering a lasting mindset and behavioral change towards saving water. During the Jal Pakhwada, schools will be developed as centers for water conservation. Workshops on the subject will be organized with participation from departments such as Jal Nigam, Panchayati Raj, Basic Education and Health. Additionally, a water pledge will be administered daily during school assemblies, and awareness about water conservation will be spread among students and parents to ensure the campaign reaches every household. To encourage active participation, activities such as essay writing, debates, quizzes, drawings and other creative competitions will be organized, helping instill sensitivity and responsibility towards water conservation among students. Special drives will also be conducted in each school to clean drinking water sources and storage facilities. Water quality will be tested through Jal Nigam laboratories with necessary purification measures ensured. The campaign will also include photo exhibitions on water conservation, interactive sessions with students and parents, and public awareness activities, making it a strong medium for behavioral change. For Parikrama, this is Sushil Chandra Tiwari from Lucknow.
The spirit of adventure soared high in Nagaland as NCC cadets from Group Headquarters Kohima etched their names in history by scaling Mount Saramathi, an altitude of 3,826 meters, the highest peak in the state on March 19 this year. We have a report from a Kohima correspondent.
This remarkable expedition marked the first ever attempt by National Cadet Corps, Nagaland, to conquer the towering peak of Mount Saramathi. Demonstrating exceptional endurance, disciplines and teamwork, around 50 members of the team successfully reached the summit, making the largest uniform contingent to achieve this feat. Their achievement stands not only as a test of physical strength, but also as a celebration of unity, resilience and determination among the youth. Cadets shared their experiences during the expedition.
It was my dream that one day or the other I'll climb the highest peak here in our state, which is Mount Saramathi. And unexpectedly, an opportunity came to me through this NCC. So with all my heart, I decided to climb the highest peak here in our state.
Talking about my preparation, every evening I went for a run at this 3 to 4 kilometers and also did some exercise to keep myself physically prepared to face any obstacles during the trek.
So it took us around 5 hours to reach the summit of the Mount Saramathi. And as we go further to the Mount Saramathi peak, the wind gets colder and colder, and the trekking made us more challenging.
The moment we reached the summit was pure euphoria. The exhaustion vanished instantly, and it was replaced by a profound sense of achievement. We hugged each other, cried for the tears of joy, and took a moment of silence to absorb the breathtaking view, and it was a moment of absolute clarity and peace.
Following the successful expedition, the cadets and officers were felicitated by Governor of Nagaland, Nand Kishore Yadav, at Lok Bhavan in Kohima today. The successful scaling of Mount Saramathi by National Cadet Corps Nagaland is more than just an expedition. It is an inspiration, testament to what young minds can achieve with courage, commitment and unity. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
और श्रोताओं, बढ़ते आगे अब बात करते हैं खेल की और देखते हैं कि खेल के मैदान में वहां की हलचल में क्या है। सबसे पहले बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया था।
And in some business news, benchmark domestic equity indices ended today's session marginally lower. The Sensex dropped 123 points, or 0.16%, to close at 77,989, and the Nifty dipped 35 points, or 0.14%, to settle at 24,197.
और अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember social reformer and nationalist Kandukuri Veerasalingam, who was born on 16th of April, 1848 in Rajahmundry, Andhra Pradesh. He is considered as the father of Telugu Renaissance movement and was one of the early social reformers from southern India who encouraged women education and remarriage of widows.
Veerasalingam was a scholar of 3 languages, Telugu, Sanskrit and English. He wrote Rajasekhar Charitramu, considered to be the first novel in the Telugu language.
Veerasalingam wrote extensively for the emancipation of women. His works were predominantly satires on the then existing amorality, superstitions, double standards, and degradation in society.
Veerasalingam used the ancient scriptures to portray the importance given to women during earlier times. He declared that India can only progress when its women will progress. He set up schools for the education of girls and women. He also performed the first widow remarriage in Andhra Pradesh on December the 11th, 1881.
Despite society's heavy scorn, he helped marry off about 40 widows in his lifetime. He published various magazines and journals wherein he championed the cause of women and education. In 1887, he started a Brahmo Mandir at Rajamundri.
Veerasalingam was one of the first few to attend the maiden session of the Indian National Congress in 1885. He passed away on the 27th of May 1919. Till his death, Kandukuri Veerasalingam continued to work for the betterment of society. We salute the great Indian.
We also remember nationalist painter Nandlal Bose, who died on 16th of April 1966. Bose is considered to be one of the pioneers of modern Indian art and a key figure of contextual modernism. During the Salt Satyagraha in 1930, Bose created a black-on-white linocut print of Gandhi walking with a staff. The print emerged as the iconic image for the non-violence movement.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध बांग्ला लेखक अद्वैत मल बर्मन को, जिनके साहित्यिक प्रतिभा ने भारतीय साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। साधारण परिवार से आने वाले अद्वैत ने अपने संघर्ष और प्रतिभा के बल पर साहित्य जगत में विशिष्ट पहचान बनाई और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति तितास एकटी नदीर नाम की है और यह उपन्यास बांग्ला साहित्य की अमूल्य धरोहर भी मानी जाती है और इसके साथ ही उनकी महान कृति के लिए उन्हें रविंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and we're also remembering Ralph Waldo Ellison, who passed away this day in 1994. He was an American writer, literary critic and scholar best known for his novel Invisible Man, which won the National Book Award in 1953. Ellison wrote Shadow and Act in 1964, a collection of political, social and critical essays, and Going to the Territory in 1986. The New York Times dubbed him among the gods of America's literary penises. A posthumous novel, June the 10th, was published after being assembled from voluminous notes Ellison left upon his death. And also remembering Anna Maria Marie Tussaud, who passed on this day in 1850, commonly known as Madame Tussaud. She was a French artist known for her wax sculptures and Madame Tussaud's, the wax museum she founded in London.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान सरिता मोर को, जिनका आज जन्मदिवस है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से कुश्ती के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। बचपन से ही उन्होंने कुश्ती के प्रति रुचि दिखाई और कड़ी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इसके साथ ही विशेष रूप से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and Sir Charles Spencer Chaplin Jr. was born on this day in 1889. He was an English comic actor, filmmaker, film editor and composer who rose to fame in the era of silent film. He became a worldwide icon through his screen persona, The Tramp, and is considered one of the film industry's most important figures, and his career spanned more than 75 years from his childhood in the Victorian era until a year before his death in 1977 and encompassed both accolades and controversy. And we're also remembering Akon, who was born on this day in 1973. He's a Singhalese American singer, songwriter, record producer, businessman and philanthropist. His debut studio album Trouble in 2004, which became his commercial breakthrough and spawned the R&B style follow-up Lonely the following year. Let's listen into it.
Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side.
Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing, and I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody, on my own. So lonely.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को वहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अभिषेक मुखोपाध्याय को। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर, और इसके साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम को 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।